हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 7 के आगे। इसके पहले तक भगवान ने बताया कि कोई व्यक्ति अगर अपरिपक्व अवस्था में कर्मों को त्यागने का प्रयास करता है तो मिथ्याचार का आचरण करता है, क्योंकि उसका मन भोगों में जा रहा है। भले ही उसने अपनी कर्म इंद्रियों को कार्य करने से रोक लिया हो, भोग की क्रियाओं से रोक लिया हो। अब श्लोक क्रमांक 7 को देखिए, जिसमें भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से कर्म ना करने से कर्म योग कहीं अधिक श्रेष्ठ है। श्लोक क्रमांक 7। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम यारभते अर्जुन कर्म इन्द्रेय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। फिर ध्यान दिलाऊंगा आपके इस बात पे कि कर्मयोग और कृष्ण भावना भावित कर्म थोड़ा अंतर है टेक्निकल दृष्टि से। कर्मयोग में व्यक्ति क्रियाओं को भगवान कृष्ण को समर्पित करता है, क्रियाओं के फल को, लेकिन कृष्ण भावना में व्यक्ति कर्म को ही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। तो कर्मयोग जो है सिद्धांतिक रूप से ये भक्ति की शुरुआत है, शुरुआती लेवल की भक्ति है। लेकिन प्रभुपाद जी हमें ट्रेनिंग यही दे रहे हैं कि अपने कर्मों को डायरेक्ट कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। दोनों ही कर्मयोग हैं, लेकिन ये उच्च स्तर का कर्मयोग है। तो जरा तात्पर्य को देखिए। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। थोड़ा इसको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहता है, ईमानदारी से बिजनेस करना चाहता है और उसको कोई जबरदस्ती साधु बना दे, तो भले ही वो साधु बन जाए, ब्रह्मचारी आश्रम में चला जाए, उसका मन बार बार बिजनेस करने की ओर जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर ये है कि उसे बिजनेस करने के लिए बोला जाए, वो अपना बिजनेस कर रहा है, समाज में रहे, लेकिन साथ साथ भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम की ओर उन्मुख होने का प्रयास करे, उन्मुख हो। एक्चुअली जो सुबह और शाम का समय है वो हरि कीर्तन में लगाए और बाकी का समय अपने बिजनेस उन कार्यों में लगाए जिसमें उसको करने की प्रवृत्ति है। और नहीं तो अगर जबरदस्ती किसी को इस प्रकार से साधु बना दिया जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है समाज में, तो फिर वो व्यक्ति ना तो भक्ति ठीक से करेगा और ना ही समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बन पाएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, इस प्रकार से अपनी अपनी क्रियाओं में व्यक्ति लगे और उनके फलों को, उन क्रियाओं को भगवान कृष्ण को समर्पित करे उनकी प्रसन्नता के लिए, और साथ साथ नवदा भक्ति के अंगों का डायरेक्ट अनुशीलन भी करे, तो बहुत अच्छे से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। नियमित का अर्थ क्या है? रोज नियम से मंगल आरती करना, रोज 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, इस प्रकार से एक नियमित, एक संयमित जीवन जी करके गृहस्थ व्यक्ति भी भगवत प्रेम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शास्त्र में इस प्रकार से शिक्षा दी गई है कि अगर उनकी उन नियमों का हम पालन करते हैं तो अपने आप ही हमारी चेतना का विकास होता है और हम उच्चतर चेतना के और उच्चतर कार्यों के योग्य बन जाते हैं, अलग से कोई प्रयास किए बिना। और अनासक्त भाव से करने का अर्थ है अपने को भोक्ता न माने, अपने को स्वामी न माने, अपने को ईश्वर न माने। ईश्वर भोक्ता और स्वामी भगवान कृष्ण को समझते हुए क्रियाओं को और उनके फलों को भगवान कृष्ण को समर्पित करते रहें। जैसे कोई गृहस्थ प्राय ये सोचेगा कि उसकी जो स्त्री है या पत्नी है वो उसके भोग के लिए है, या उसके जो बच्चे हैं घर है वो सब उसके भोग के लिए है, लेकिन ये विचार गलत है। बल्कि ये सोचना चाहिए कि कैसे पत्नी को भगवान की सेवा में लगाएं, बच्चों को भगवान की सेवा में लगाएं और घर संपत्ति को भी भगवान की सेवा में लगाएं। इस प्रकार से अनासक्त भाव से क्रियाएं वही रहेंगी, लेकिन भाव के परिवर्तन से उसका जो प्रभाव है वो बहुत अंतर देगा। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। निष्ठा का अर्थ क्या है? निष्ठा का अर्थ है इस कर्मयोग की पद्धति में विश्वास होना कि इसके द्वारा मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और निष्ठा का बहुत अर्थ है, निष्ठा का एक और भी अर्थ है कि अगर तुरंत कोई फल प्राप्त ना हो तो इसकी वजह से का मतलब ये नहीं कि उस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम त्याग देंगे। ये सब दृढ़ निष्ठा का सूचक है। दूसरा ये नहीं है कि थोड़ा कष्ट आ रहा है परिवार का भरण पोषण करने में या और समाज में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसे छोड़ छाड़ करके हम संन्यास, सो कॉल्ड संन्यास ले लें, इस प्रकार से ये ठीक नहीं है। और सबसे खराब तो ये है कि लोगों को धोखा देने के लिए व्यक्ति साधु का वेश पहन ले। एक्चुअली साधु का जीवन होता है दूसरे लोगों को भक्ति में आके मदद करने के लिए, वो और अन्य कर्तव्यों को त्याग देते हैं ताकि इस महत्वपूर्ण कर्तव्य को ठीक प्रकार से जीवन में उतार सकें, अन्य लोगों की मदद कर सकें जिनको भक्ति के बारे में नहीं पता है और खुद भी भक्ति बहुत अच्छे से करें। अगर इस प्रकार से आध्यात्मिकता का अनुशीलन हम नहीं कर सकते हैं और दूसरों की मदद नहीं करना चाहते हैं तो केवल रोटी खाने के लिए इस प्रकार से साधु बन जाना उचित नहीं है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की, प्रवंचक मतलब धोखेबाज ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का स्टेटमेंट है। दुष्ट मन तुम्हें किशेर वैष्णव प्रतिष्ठारा घरे प्रतिष्ठारा तरे निर्जन घरे तब हरि नाम केवल कैटव। कुछ लोग अपरिपक्व अवस्था में एकांत स्थान में जाकर हरे कृष्ण मंत्र जप करने का स्वांग रच सकते हैं, लेकिन उनका मन भोगों में ही लगा रहेगा और इस प्रकार के हरि नाम को शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कैटव यानी चीटिंग कहते थे, धोखेबाजी कहते थे। तो इससे बेहतर है कि नियमित जीवन जिए हम लोग और जिस भी आश्रम है में रह रहे हैं उसके कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन कृष्ण भावना में पालन करने का प्रयास करें। श्लोक क्रमांक 8। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि कर्मण शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेद कर्मण। अपना नियत कर्म करो। नियत मतलब जो शास्त्रानुमोदित है वो जो आपको करना ही है, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। कितना अद्भुत बात है, कर्म फल से बचने के लिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म ना करने के बजाय कर्म करना श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म कैसे करें उसको समझ में आना चाहिए। और इस बात को नारद मुनि भागवत में बड़ा सुंदर शब्द यूज करते हैं, कहते हैं ब्रह्म कर्मणि भावितम यदीश्वरे भगवती ब्रह्म कर्मणि भावितम। हमारा जीवन परफेक्ट हो जाता है अगर हमारे क्रियाएं भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाती हैं, ब्रह्म कर्म में परिवर्तित हो जाती हैं। भगवान इस बात को भगवद गीता में बोलते हैं अध्यात्म कर्म चाखिलम। योगी जन है वो केवल आध्यात्मिक कार्य करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, संलग्न होते हैं। तात्पर्य को देखिए, लेकिन इससे पहले एक और बात यह है कि भगवान बोल रहे हैं कर्म नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा। अरे रोटी भी खा रहे हैं तो रोटी तो मुंह तक लाई जाए, मुंह तक तो नहीं घुसाई जाएगी, मुंह में तो नहीं डाली जाएगी। रोटी सामने प्रस्तुत करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, चबाएंगे, मुंह में रखेंगे, तो कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए शरीर का निर्वाह भी बिना कर्म के नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म करना सीखो कि किस प्रकार से कर्म करने से कर्म बंधन में हम फंसे नहीं। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, हम सबको भी। तात्पर्य ऐसे अनेक छद्मधानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था यानी बेहतर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्म द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्य ऊपर जीवित रहने का प्रयास न करे। कुछ घटनाओं के द्वारा आप इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आश्रम में एक भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, और उन्होंने देखा कि वो तो उनको तो 7 या 8 घंटे की सेवा दी गई थी और कुछ नाम जप करने के लिए बोला गया था, लेकिन एक भक्त थे, इनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, उस समय वो ब्रह्मचारी थे और वो सुबह से शाम तक केवल हरे कृष्ण मंत्र जप करते थे और 2 टाइम प्रसादम लेते थे बस, और कोई सेवा नहीं करते थे। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास जाकर बोले कि ये क्या बात है, आप मेरे को दिन भर सेवा कराते हैं और इनको आपको सेवा में नहीं लगाते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा आप भी दिन भर जप करना चाहते हो, ठीक है कल से आप जप कीजिए केवल। तो उन्होंने भी कल एक दिन प्रयास किया, 2 दिन प्रयास किया, 3rd-4th दिन आकर के उन्होंने माला गुरु जी के पास ला के बोल दिया, गुरु जी के पास आए, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास आए और बोले मेरे से नहीं हो रहा है, मैं और नहीं कर सकता, मैं तो सामान्य सेवा या जो मेरी सेवा है मैं वही कर सकता हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि हरिनाम में वाकई रुचि ये बहुत उच्च चेतना के द्वारा आती है। नाम उच्चारण कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें एक विमल प्रेम, नाम के प्रति प्रेम, नाम के प्रति आसक्ति, ये बहुत उच्च चेतना का व्यक्ति ही कर सकता है कि बस केवल दिन भर बैठ करके हरे कृष्ण मंत्र करे। हम सब बद्धात्माओं के लिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र जप करें, सुबह भी करें, शाम को भी करें, कीर्तन करें और साथ साथ अन्य क्रियाएं जो कि हमें करना अच्छा लगता है उन क्रियाओं को कृष्ण को समर्पित करें। उसके द्वारा भी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। भगवान हम लोग प्रभुपाद जी इस बात में समझाते थे कि हम लोग इतने इतने छोटे हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन सी सेवा करें, भगवान बस यही देखते हैं कि हम उनकी सेवा में संलग्न हैं। तो हम अपने प्रयास करें कि इस प्रकार से जब हमारा हृदय शुद्ध होगा धीरे धीरे करके, तो फिर स्वतः भगवान के नाम में रुचि आएगी। एक अच्छा उदाहरण और दूंगा, 2004 या 2005 की बात होगी या 2006 की बात हो सकती है। मैं एक भक्त से मिला वाणी आश्रम में, मैं एक स्टूडेंट के रूप में आया था और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई उन ब्रह्मचारी ने। उन्होंने बोला कि कई साल तक, 5, 6 साल या 8 साल तक उनका जप बहुत ही रूखा होता था, कोई उनको टेस्ट नहीं मिलता था, स्वाद नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने ये भावना रखी कि जो भी सेवा उनको दी जाती है उस सेवा को बड़े प्रेम भाव से करते थे, बहुत अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते थे। तो बोले कि इस सेवा की भावना को कल्टीवेट करने के द्वारा अब वो 32 माला से कम जप कर नहीं सकते। तो एक अद्भुत चीज हम यहाँ देख रहे हैं जो शिला प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में भी समझाते हैं कि सेवा की भावना के द्वारा व्यक्ति निरपराधिक जप करने की योग्यता प्राप्त करता है। और अगर हम निरपराधिक जप करते हैं तो जप में हमको बहुत रुचि प्राप्त होगी, टेस्ट एक अद्भुत सुख मिलेगा। तो यदि आपको पहले से सुख प्राप्त है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर सुख प्राप्त नहीं है तो वैष्णव की सेवा करें, अन्य जीवों की सेवा करें भगवान के संबंध में, इससे भगवान के नाम की कृपा हमारे पर होती है, हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम फिर भगवान के नाम का उच्चारण बड़े स्वाद के संग कर पाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने हृदय को हम तुरंत शुद्ध या बहुत जल्दी शुद्ध करने का प्रयास करने की बजाय इस प्रकार से आचरण करें कि हमारा हृदय हरि नाम के साथ साथ, हरि नाम से तो शुद्ध हो ही, हरि कथा से शुद्ध हो, साथ साथ भगवान के चरणों में समर्पित अन्य क्रियाओं के द्वारा भी समर्पित हो। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में भी इस बात को बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि आप लोग पुरी में रहिए। हरिदास ठाकुर जी का आश्रम था कि कुटिया थी, आश्रम क्या कहेंगे, और आप लोग दिन भर केवल हरि नाम और हरि कथा, हरि नाम की जप कीजिए और हरि कथा का आस्वादन कीजिए। तो प्रभुपाद कह रहे थे उसमें जीव को सब में बोलते हैं कि कलयुग में वस्तुतः हरि नाम से ही सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि हम लोगों के हृदय दूषित है तो केवल दिन भर बैठ के नाम जप कर ना कर पाने की क्षमता के कारण हम लोगों को डेटी वर्शिप भी करना चाहिए, भगवान के विग्रह की सेवा भी करना चाहिए या विग्रह की सेवा से संबंधित सेवाएं करनी चाहिए, जिससे हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा और फिर हम नाम केवल नाम का आश्रय करने के योग्य बन पाएंगे। अब भगवान श्लोक क्रमांक 9 में बताएंगे कि व्यक्ति को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि कर्म, आपने बताया कि कर्म तो करना ही पड़ेगा शरीर चलाने के लिए, और कर्म करेंगे तो कर्म बंधन लगेगा। तो भगवान यहाँ पे बड़ी सुंदर युक्ति बता रहे हैं कि देखिए कर्म करें, कर्म करना ना करने से श्रेष्ठ है, लेकिन किसके लिए करें जिसके द्वारा बंधन ना लगे। तो ध्यान दीजिए श्लोक क्रमांक 9 को, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर अनुवाद किया है, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ का अर्थ ही होता है भगवान विष्णु, इसीलिए सीधे रूप से तात्पर्य बताया कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तात्पर्य, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सबके लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं, और इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में आप पढ़ सकते हो। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वाय विष्णु, ये हमने समझा दिया था। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है, अर्थात अग्नि में कोई यज्ञ अर्पित करे या फिर भगवान के विग्रह की सेवा करे तो एक ही उसको लाभ प्राप्त होगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। यानी कि सुबह उठना, स्नान करना, मंगल आरती करना, जप करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के लिए कुछ या इन सारे कार्यों को करने के लिए नौकरी के लिए जाना, इस प्रकार से सारे कार्य यज्ञ हो जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचार वता पुरुषेण परह पुमान विष्णुर आराध्यते पुंसा नानत्तस्तोष कारणम। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांधे लेता है। बड़ा खतरनाक है एक्चुअली। इस जगत में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो वो निश्चित रूप से हम कार्य बंधन का कारण होगा। अब आप समझिए कि हम क्या, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, भाई हमें स्नान करना पड़ता है, तो स्नान में भगवान विष्णु की प्रसन्नता क्या है? बिल्कुल है। भगवान कृष्ण इस बात को आगे बोलते हैं, शौचम आत्म विनिग्रह, शरीर की तपस्या है साफ सुथरा रहना, ये शरीर की तपस्या है। तो जब हम साफ सुथरे रहेंगे तभी तो भगवान की सेवा कर सकते हैं, गंदे तरीके से तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो स्नान है ये भी अनुसंगिक भक्ति कहलाती है, साक्षात भक्ति है श्रवण कीर्तन, और वो क्रियाएं जो इन साक्षात भक्ति की क्रियाओं को सपोर्ट करती हैं वो भी इन इन भक्ति के प्रभाव से, श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति के प्रभाव से अनुसंगिक भक्ति बन जाती है। तो स्नान करना भी भक्ति बन जाता है। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम कृष्ण की सेवा कैसे करें, इसलिए भक्तों का संग और भक्तों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। अर्जुन बाह्य दृष्टि से बड़ा घोर कर्म कर रहे हैं, जिसमें अपने गुरु की उनकी हत्या करनी पड़ी कर पड़ रही है, ये पड़ेगी, लेकिन क्योंकि भगवान के मार्गदर्शन में कर रहे हैं इसलिए उनको कोई कर्मबंध नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। जिस प्रकार से आर्मी का एक व्यक्ति खूब गोली चलाता है, खूब सारे आतंकवादियों को मारता है तो उसको मेडल मिलता है, लेकिन अगर वही सैनिक अगर आकर के घर में किसी एक व्यक्ति को भी गोली मार देता है अपने लिए, तो उसको तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। तो यानी कि अपने बिहाफ पे काम करें, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य करेंगे कर्म बंधन लगेगा, और भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कितना भी कार्य करें कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। और ये बातें खाली हवा में ही नहीं होंगी, कर्म बंधन के नाश के साथ साथ आपके अंदर एक अद्भुत शांति का अनुभव भी आप करेंगे, जो कि जो लोग कर्म बंधन में होते हैं उनको नहीं होता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता या तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। यानी कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में प्रेम होना चाहिए, और वो प्रेम होता है उत्पन्न हृदय के शुद्धिकरण के द्वारा, और हृदय का शुद्धिकरण होता है भक्ति योग का अभ्यास के द्वारा, और भक्ति योग का अभ्यास की शुरुआत होती है कर्म योग के द्वारा, यानी कि कर्म को कृष्ण को समर्पित करने की अभ्यास करना, हर कर्म को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने के लिए प्रयास करना। हरे कृष्णा।